ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् तत् जय मुदीरये नष्ट प्रायश अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
हरे कृष्ण। काल क्लास के बाद एक भक्त ने पूछा था, इस तरह मनु का वंश परंपरा इस तरह नाम सुन के क्या फायदा। तो ये भागवत में पहले में ये बात वर्णन किया है, नष्ट प्रायश अवद्रेश। यदि हम रोज श्रवण करेंगे, प्रभुपाद बांग्ला में गान लिखते हैं, भागवतेर कथा से तब अवतार धीर होया सुने यदि काने बार बार। श्रीमद भागवत है, भगवान का ग्रंथ रूप में प्रकाश है। यदि कोई व्यक्ति धीर होकर रोज श्रवण करेंगे तो हृदय में जितना सर अभद्र है, अभद्र उत्पन्न होते हैं रज और तमगुण से, तो भागवत है शुद्ध सत्व गुण का वस्तु है, विषय है। तब रज और तम नहीं रहेंगे भागवत श्रवण करने से, तब हृदय में शुद्ध सत्व अर्थात वासुदेव स्थिति होने के कारण हृदय में वासुदेव भगवान का प्रकाश होगा। तब हृदय के सारे अभद्र काम क्रोध लोभ सब विनाश होते हैं और हमारे जितना सारे संशय संदेह विनाश हो जाते हैं, हृदय ग्रंथि सब छिन्न हो जाते हैं और जितने सारे कर्म फल सब विनाश हो जाते हैं। इसीलिए रोज भागवत श्रवण करना बहुत ही जरूरी है। आज अष्टम स्कंद का चौदह अध्याय, ये अध्याय का नाम है विश्व व्यवस्था की पद्धति। श्रीमद् भागवत 12 स्कंद है लेकिन यह 10 विषय वस्तु वर्णन हुआ है, तो उनमें से एक है मन्नांतर शनु कथा। मन्नांतर अवतार का वर्णन है ये स्कंद में हो रहा है। तो आज 14 अध्याय उनका नाम है विश्व व्यवस्था की पद्धति। प्रभुपाद ये अध्याय का सारांश प्रदान किया पहले, हम वहां पाठ करेंगे पहले। इस अध्याय में मनु के लिए भगवान द्वारा नियत कर्तव्य का वर्णन हुआ है। सारे मनु तथा उन सब के पुत्र ऋषि देवता और इंद्र भी भगवान के विभिन्न अवतार के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। प्रत्येक चतुर्युग में सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग तथा कलियुग आते हैं और प्रत्येक चतुर्युग के अंत में भगवान के आदेश अनुसार कर्म करने वाले ऋषिगण वैदिक ज्ञान का वितरण करके शाश्वत धार्मिक नियम की पुनः स्थापना करते हैं। मनु का कर्तव्य धर्म की पद्धति को पुनः स्थापित करना है। इसलिए प्रभुपाद मनु संहिता बारे बहुत बताया। मनु शब्द आया है मनुष्य मानव पन्न है, ये दोनों से दानव। तो जब मनुष्य मानव आया तब मानव का जो धर्म क्या होना चाहिए, तो मनु पहले शुरू कर वो नियम स्थापना किया है। जिस तरह हमको बचपन में कोई कोई धर्म का आदमी बोलते थे, अरे तुम्हारे धर्म का कोई सनातन इतिहास नहीं है, हमारे धर्म का तो इतिहास है, इतना साल पहले शुरू हुआ, तुम्हारे धर्म क्या है, तुम्हारे धर्म का कोई इतिहास नहीं, कब शुरू हुआ है। तो यश उनका थोड़ा दुख लगता था, हाँ क्यों हमारे धर्म का इतिहास क्यों नहीं, अलग अलग धर्म का तो इतिहास है, यश उनका दुख लगता था। लेकिन प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ने के बाद पता चला ये धर्म का इतिहास नहीं हो सकते। जिस तरह पानी का जो धर्म तरल था उसका कोई इतिहास नहीं है, क्या आइंस्टाइन न्यूटन ने स्थापित किया है उसके बाद पानी का धर्म तरलता आया है। पानी जब से भगवान सृष्टि किया तब से उनका धर्म तरलता है, जब शक्कर बनाया तब से उनका धर्म है मीठा बना है। तो ये धर्म इस तरह बाद में इस तरह हजार साल 2000 साल 1500 साल पहले धर्म सृष्टि होगा इस तरह नहीं हो सकते। और यदि कोई इस तरह धर्म होगा वो सही धर्म नहीं है, नित्य धर्म नहीं है। तो ये जब शुरू हुआ है मनु पहला मानव है तब उन्होंने ये मानव जाति का कर्तव्य किया, तभी उन्होंने ये संगीत सृष्टि किया। जिस तरह हम जब मोबाइल खरीद करते हैं, इस तरह नहीं, मोबाइल खरीद करने के बाद एक साल बाद हमको मैनुअल भेज देंगे कैसे उसको इस्तेमाल करना है। जब बाजार में मोबाइल छोड़ते हैं उसके पहले मैनुअल बनाते हैं ताकि जो खरीद करेगा इसको इस्तेमाल कर सकते। तो इस तरह ये वैदिक शास्त्र ग्रंथ है, शुरू से सृष्टि है। भगवद गीता में कहा सहजज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति, सृष्टि के प्रारंभ से है। तो मनु का कर्तव्य धर्म की पद्धति को पुनः स्थापित करना है। मनु के पुत्र उसके आदेशों का पालन करते हैं और इस प्रकार सारा विश्व मनु का उसकी संतानों द्वारा पालित होता है। इंद्रगण स्वर्गलोक के विभिन्न शासक हैं, वे देवताओं की सहायता से तीनों लोकों पर शासन चलाते हैं। भगवान भी विभिन्न युगों में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वे सनक सनातन यज्ञवल्क दत्तात्रेय तथा अन्यों के रूप में प्रकट होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान कर्तव्य योग वे सिद्धांत इत्यादि के विषय में उपदेश देते हैं। वे मरीचि इत्यादि के रूप में संतानें उत्पन्न करते हैं, राजा के रूप में वे दुष्टों को दंड देते हैं और काल के रूप में वे सृष्टि का संहार करते हैं। कोई तर्क कर सकता है कि यदि सर्वशक्तिमान भगवान मात्र अपनी इच्छा से ही सब कुछ कर सकता है तो फिर उन्होंने इतने महापुरुषों को व्यवस्था का भार क्यों दे रखे हैं? जो लोग माया के वश में हैं वो यह नहीं समझ सकते हैं कि भगवान किस तरह और क्यों ऐसा करते हैं। एक नंबर श्लोक। महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की, हे परम ऐश्वर्यशाली सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके मुझे बताएं कि प्रत्येक मन्वंतर में मनु तथा अन्य लोग किस तरह अपने अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं और वे किसके आदेश से ऐसा करते हैं। दो नंबर श्लोक। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, सारे मनु, मनु के पुत्र, ऋषि, इंद्र तथा देवता भगवान के योग्य जैसे विभिन्न अवतारों में नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा श्लोक। हे राजन, मैं आपसे पहले ही भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कर चुका हूं, यथा यज्ञ अवतार का। यही अवतार मनु तथा अन्यों का चुनाव करते हैं और उन्हीं के आदेश पर वे विश्व व्यवस्था को संचालन करते हैं। तो बात एक लाइन में उसका तात्पर्य दिया, सारे मनु भगवान के विविध अवतार के आदेश का पालन करते हैं। चतुर्थ श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य दिया, ये श्लोक हम पाठ करेंगे। चतुर्युगान्ते का लेना कृष्तन श्रुतिगणन यथा चतुर्युगंत कालेन ग्रस्तान श्रुतिगणन यथा तपसा ऋषयो अपश्यन् तपसा ऋषयो अपश्यन् यत धर्म सनातन यत धर्म सनातन चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान् श्रुतिगणान् यथा तपसा ऋषय अपश्यन् यत धर्म सनातनः चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान् श्रुतिगणान् यथा तपसारी शय पश्यन् यत धर्म सनातनः उदार्थ अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद द्वारा चतुर्युग अंते प्रत्येक चार युगों के अंत में अर्थात सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग तथा कलियुग का अंत में कालेन समय आते पर ग्रस्तान विनष्ट श्रुति गणन वैदिक उपदेश यथा जिस तरह तपसा तपस्या से ऋषय ऋषिगण अपश्यन दुरुपयोग देखकर यतः जहां से धर्म वृत्ति परक कार्य सनातन शाश्वत अनुवाद प्रत्येक चार युग के अंत में महान संत पुरुष जब यह देखते हैं कि मानव के शाश्वत वृत्तिपरक कर्तव्य का दुरुपयोग हुआ है तो वे धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करते हैं। कृपया दोहरे प्रत्येक चार युग के अंत में महान संत पुरुष जब यह देखते हैं कि मानव के शाश्वत वित्तीय पर कर्तव्य का दुरुपयोग हुआ है तो वे धर्मों के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में धर्म तथा सनातन ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतिम में इस श्लोक का अंतिम क्या यथा धर्म सनातन तो पूर्वाद ने ये दो शब्दों को चुना लिया। तात्पर्य में इस श्लोक में धर्म तथा सनातन ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सनातन का अर्थ है शाश्वत और धर्म का अर्थ है वृत्तिपरक कर्तव्य। ये सनातन शब्द का विस्तृत वर्णन श्रील प्रभुपाद भागवत गीता का भूमिका में बहुत अच्छे ढंग से किया है। सनातन धर्म का अर्थ क्या है, वहां उन्होंने प्रभुपाद ने कहा अलग अलग जो धर्म है वो धर्म नहीं है, वो है मतवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, गणतंत्रवाद, धर्म धनतंत्रवाद, मुर्दावाद, जिंदावाद, सब बात। इंग्लिश में इसका कहता है इजम, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, स्टालिनिज्म, डार्विनिज्म, सब इजम है लेकिन धर्म नहीं है। पृथ्वी ते धर्म नामे जत कुछ चले भागवत कहे तहा परिपूर्ण छल। प्रभुपाद यहां पर विस्तृत वर्णन किया क्योंकि जिस तरह पानी का धर्म तरलता पानी से कभी अलग नहीं कर सकते, शक्कर यदि नमकीन की तरह लगे उसको शक्कर नहीं बोलेंगे, तो धर्म कभी वस्तु से अलग नहीं कर सकते। प्रभुपाद इंग्लिश में अनुवाद करता है इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस, कभी अलग नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद कहता है कोई एक व्यक्ति मुसलमान हिंदू हो रहा है, हिंदू बुद्धिस्ट हो रहा है, बुद्धिस्ट अलग कोई धर्म को ईसाई बन रहा है, तो इस तरह जब धर्म परिवर्तन कर रहा है तो भी धर्म कैसे हो सकते। तो धर्म है सनातन, यथा धर्म सनातन। शतयुग से कलियुग आते आते धर्म तथा वृत्तिपरक कर्तव्य में क्रमश राश आता जाता है। हाँ, यहां यद्य भी सनातन धर्म विनाश नहीं होता है लेकिन यहां बताए एक किसको होता है वृत्तिपरक कर्तव्य को विनाश, सनातन धर्म विनाश नहीं होता है। हाँ, ये धर्म दो प्रकार होते हैं, एक है नित्य धर्म और एक नैमित्तिक धर्म। हाँ, तो नित्य धर्म विनाश नहीं लेकिन वो कवर आवृत हो सकते हैं, जिस तरह एक चुंबक, चुंबक मिट्टी से कोई वस्तु से वो ढकने से उसका आकर्षण क्षमता नष्ट नहीं होता है लेकिन आकर्षण क्षमता नहीं रहता है लेकिन उसको अंदर में जो क्षमता है वो है। तो यहां पर बोला है सतयुग से कलियुग आते आते धर्म तथा वृत्तिपरक कर्तव्य में क्रमश राश आ जाता है। सतयुग में धर्मों का पूरी तरह पालन होता है किंतु त्रेता में धर्मों की कुछ कुछ उपेक्षा होती है और केवल तीन चौथाई धार्मिक कर्तव्य चालू रह पाते हैं। द्वापर में केवल आधा धर्म रह जाते हैं और कलियुग में केवल एक चौथाई धर्म रहता है जो क्रमश लुप्त हो जाता है। कलियुग के अंत में धर्म या मानव के वृत्तिपरक कर्तव्य प्राय विनष्ट हो जाते हैं। दरअसल हम इस कलियुग में केवल 5000 वर्ष भीतर प्रविष्ट हुए हैं, फिर भी सनातन धर्म का राश अत्यंत मुखर है। अतएव ऋषियों का कर्तव्य है कि वे सनातन धर्म के हित के बारे में गंभीरता से सोचे और समस्त मानव समाज के लाभ के लिए पुनः स्थापित करने का प्रयास करें। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ किया गया है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महत् गुणः कृतनाथ एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज। या कलेर दोष निधि राजन, दोष निधि, निधि शब्द था समुद्र, कलियुग है दोष का समुद्र, अस्ति ही एक महान गुण है लेकिन यद्यपि ये दोष का समुद्र है लेकिन इसके अंदर एक महान गुण है। कीर्तनात एवं कृष्णस्य, केवल भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संग परम ब्रजित। मुक्त संग ये भौतिक जगत का बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम से चले जाते हैं। समग्र कलियुग दोष से पूर्ण है, यह दोष के असीम समुद्र के भांति है কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন অত্যন্ত প্রামাণিক হ্যাঁ। অতএব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে চরণ চিহ্ন কা অনুগমন করতে হয়ে উনকে আদেশ কে অনুসার হাম ইস সংকীর্তন অর্থাৎ কৃষ্ণ কীর্তন কে আন্দোলন কো বিশ্বভর মে জারি রাখনে কা প্রয়াস কর রহে হ্যায়, জিসকা উদ্ঘাটন আজ সে 500 বর্ষ পূর্ব উনহোনে কিয়া থা। অব যদি ইস আন্দোলন কে উদ্ঘাটক বিধি বিধানো কা দৃঢ়তা সে পালন করে আর সারে মানব সমাজ কে লাভ কে লিয়ে ইস আন্দোলন কা প্রসার করে তো এই সনাতন ধর্ম কি পুনঃস্থাপনা করতে হয়ে নবীন জীবনশৈলী কা সূত্রপাত করেঙ্গে। মনুষ্য কা সনাতন ধর্ম হ্যায় কৃষ্ণ কি সেবা করনা, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস, সনাতন ধর্ম কা এই সারাংশ হ্যায়। সনাতন ধর্ম কা অর্থ হ্যায় নিত্য ইয়া শাশ্বত, আর কৃষ্ণদাস কা অর্থ হ্যায় কৃষ্ণ কা দাস। মনুষ্য কা শাশ্বত বৃত্তিপরক কর্তব্য কৃষ্ণ কি সেবা করনা হ্যায়, কৃষ্ণ ভবনের আন্দোলন কা এই সার হ্যায়। তো প্রভুপাদ কা তাৎপর্য ইহা সমাপ্ত হ্যায়। প্রভুপাদ ইহা কহতে হ্যায় মনুষ্য কা ধর্ম হ্যায় সনাতন, এই শ্লোক মানতে হবে যথা ধর্ম সনাতন, লুপ্ত হো রা হ্যায় লেকিন হামারে কর্তব্য ও সনাতন ধর্ম কা পুনঃস্থাপন করনা। মনুষ্য কা সনাতন ধর্ম হ্যায় কৃষ্ণ কি সেবা করনা, ও সনাতন ধর্ম কি হ্যায়। প্রভুপাদ ভগবদ গীতা মা ও ভূমিকা মে ইস তর বর্ণন করতে হ্যায়, জব কই বস্তু কা ও গুণ বস্তু সে আলাগ নেই কর সকতে তো গুণ কি আপ জো জীবাত্মা কে অন্দর গুণ হ্যায়। প্রভুপাদ কহতে হ্যায় হর জীব প্রেম চাতে হ্যায় আর দূসরা কো প্রেম করনা চাতে হ্যায়, ও চাতে দূসরা আদমি উনকো প্রেম করে আর উনোনে দূসরে কো প্রেম করে। প্রভুপাদ ইয়া ভি কহতে হ্যায় কিসকো কই প্রেম করনে কা জো বস্তু নেই রহেগা তো ফির ঘর মে কুত্তা রাখ উনকে সাথ প্রেম করতে হ্যায়, কুত্তা কে সাথ ঘুমতে হ্যায়, কি প্রেম করনাই পড়েগা উনকো। আর এই প্রেম কা লক্ষণ কি হ্যায়, প্রেম কা লক্ষণ হ্যায় উনকে লিয়ে কুছ করনা। হাম যদি কই এক বন্ধু দূসরা বন্ধুকে বলেঙ্গে মে তুমকো বহুত প্রেম করতা হুম, তো বন্ধু কে বলেঙ্গে তুম আজ তক মুসকো কিয়া দিয়া, কিয়া কিয়া মেরে লিয়ে জো প্রেম করতে হুম, তো প্রেম কা লক্ষণ হ্যায় উসকে লিয়ে কুছ করনা অর্থাৎ সেবা। অর্থাৎ হর জীবাত্মা কে জো গুণ হ্যায় প্রেম করনা আর প্রেম কা প্রকাশ হতা হ্যায় সেবা কে মাধ্যম। অভি ইসকো প্রশ্ন আ সকতা হ্যায় যে সেবা যদি ধর্ম হোগা তো হাম দেখতে হ্যায় যে প্রেম পতি পত্নী কা প্রেম তো টুট জাতে হ্যায়, এক বন্ধু কে দূসরা বন্ধু কা প্রেম তো নেই রতে হ্যায়। প্রভুপাদ কহতে হ্যায় কিউকি এই প্রেম হতে হ্যায় এক অনিত্য বস্তু কে সাথ দূসরা অনিত্য বস্তু কে শরীর কে সাথ। জব হাম জীবাত্মা হ্যায় তো জব জীবাত্মা নিত্য হ্যায় তো নিত্য বস্তু কা ধর্ম নিত্যই হোগা। তো জব এই নিত্য বস্তু জীবাত্মা দূসরা অনিত্য বস্তু কে সাথ কই প্রেম করেঙ্গে তো প্রেম ভি অনিত্য হোগা। যদি জীবাত্মা নিত্য হ্যায় তো উনকা ধর্ম নিত্য হ্যায় তো উনকা ধর্ম যদি প্রেম হোগা তব এ জীবাত্মা কো দূসরা এক নিত্য বস্তু কে সাথে প্রেম কা সম্পর্ক শুরু করনা পড়েগা। তো আত্মা আর পরমাত্মা স্বর কে দূসরা তিসরা কই নিত্য বস্তু হ্যায় নেই, ইসিলিয়ে জীবাত্মা কে সাথ পরমাত্মা কা সাথ প্রেম কা যে সম্পর্ক হ্যায় এ হ্যায় সনাতন, এ ধর্ম হ্যায়। আর এ যে প্রেম কা সম্পর্ক হ্যায় দু নিত্য বস্তু কে সাথ হ্যায় ইসিলিয়ে ও ধর্ম ভি নিত্য হ্যায়, ইসিলিয়ে ও ধর্ম কা নাম হ্যায় সনাতন। ইসিলিয়ে প্রভুপাদ কহতে হ্যায় ধর্ম একই হ্যায় উসকা নাম হ্যায় সনাতন। আর ইয়া পর প্রভুপাদ কহতে হ্যায় মনুষ্য কা সনাতন ধর্ম হ্যায় কৃষ্ণ কি সেবা করনা, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। এ বর্ণনা চৈতন্য চরিতামৃত মে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনাকে চৈতন্য মহাপ্রসাদ সনাতন গোস্বামী কা। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ। জীবকে স্বরূপ, স্বরূপ শব্দ অর্থাৎ রূপ তো জানতে, রূপ অর্থাৎ রূপ চেহারা, অর্থাৎ অ্যাপিয়ারেন্স, আর স্বরূপ অর্থাৎ, স্বরূপ অর্থাৎ স্ব অর্থাৎ খুদ কা, তো খুদ কা রূপ, তো আমারে খুদ কা রূপ কি হয়, অর্থাৎ আমারে খুদ কা রূপ যা পুছতে হয়, অর্থাৎ আবি যে রূপ হো আমারে রূপ নেই হ্যাঁ, যদি আপকো বলেঙ্গে কই আপকা রূপ স্বরূপ কিয়া হ্যায়, তো বলে এই মেরা রূপ হ্যায়, বলে নেই আপকা নেই হ্যায়, যদি হামকো কই পুছতে আপকা স্বরূপ কিয়া হ্যায়, তব হাম বলেঙ্গে আরে কে এ মেরা রূপ নেই হ্যায়, দুসরা সে উধাই লে কে মেরে এ রূপ, হ্যাঁ এ রূপ আমারে নেই হ্যায়, আজ যদি হাম, আজ মেরা ওয়েট হ্যায় 60 কিলো, মে পাঁচ দিন কুছ খানা পিনা নেই করুঙ্গা, 5-6 কিলো কম হো জায়গা, ও কাহা গিয়া, তো এ যে শরীর বানা হুয়া হ্যায় পঞ্চভূত সে বানা হুয়া হ্যায়, ও মেরা ও হামারে স্বরূপ নেই হ্যায়, এ স্বরূপ আবি যে রূপ হ্যায় ও স্বরূপ নেই হ্যায়, আবি ও হাম কই জায়গা সে উধার লিয়া হ্যায়, উসকো লেকে হাম ও কই এক কিরায়াওয়ালা মাকান মে হাম রহ রহা হ্যায়, ও হামারে অরিজিনাল মাকান নেই হ্যায়, কবি ভি হামকো ছোড়না পড়েগা, ও স্বরূপ হ্যায় কৃষ্ণ কা নিত্যদাস। চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টম 5 নম্বর শ্লোক মে কহতে হ্যায়, ওই নন্দ তনুজ কিঙ্করম, হে কৃষ্ণ হে নন্দনন্দন, মে আপকা নিত্যদাস হুয়ে মেরা স্বরূপ হ্যায়, ওই নন্দ তনুজ কিঙ্করম, মে আপকা কিঙ্কর হুঁ নিত্যদাস হুঁ, লেকিন মে গলতি সে হ্যাঁ এ ভবসাগর মে গির গিয়া হুঁ, হামারে স্বরূপ কিয়া হ্যায়, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর গান মে লিখতে হ্যায়, শরীর অবিদ্যা জাল, হামারে শরীর হ্যায় এক অবিদ্যা অজ্ঞান কা জাল হ্যায়, নেটওয়ার্ক অফ ইগনোরেন্স, তো হাম জীবাত্মা হ্যায় এই শরীর জাল কে অন্দর ফাঁস গিয়া হ্যায়, ইসকে অন্দর জড় ইন্দ্রিয় তাহে কাল, কাল জড় ইন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা তক, এ পাঁচ ইন্দ্রিয় কাল অর্থাৎ সবকে তারা অন্দর মে হ্যায়, আমার স্থিতি কি হ্যায়, হাম রোজ গাতে হ্যায় কম সে কম 2-3 বার তো গাতে হ্যায়, এ শরীর জীবাত্মা শরীর জাল কে অন্দর ফাঁস গিয়া উসকে অন্দর পাঁচ অন্দর পাঁচ সব অন্দর মে ঘুষা দিয়া, এক তো জাল কে অন্দর মছলি ফাঁসনে সে উনকা হালত কিয়া হোগা, আর উসকে অন্দর পাঁচ সব অন্দর মে ঘুষা দিয়েগা তো উনকা হালত ওর খারাপ হ্যায়, ইহাই খতম নেই হ্যায়, জীবে ফেলে বিষয় সাগরে, ও স্থিতি মে হাম জীবাত্মা হ্যায় হামকো শরীর জাল কে অন্দর ফাঁসা কর, পাঁচ সব অন্দর মে ঘুষা কর, সমুদ্র কে বীচ মে গিরা দিয়া, আর কোন সা সমুদ্র বিষয় সাগর, হ্যাঁ বিষয় সাগর এ শব্দ সে পাতা হ্যায় যে সাগর মে বিষয় হ্যায়, নাম জিসকা ক্ষীর সাগর যা পর দুধ হ্যায়, তো বিষয় সাগর মে বিষ হ্যায়, তো বিষ কে সমুদ্র মে গিরা দিয়া, জব বিষ কে সমুদ্র মে গির যায়েঙ্গে তো কিয়া পিয়েঙ্গে উধার মে, বিষ পিয়েঙ্গে, জব বিষ পিয়েঙ্গে তো কি হগা হৃদয় জলেগা, তো ভক্তি বিনোদ ঠাকুর এই শিক্ষা 5 নম্বর গান মে ইস্তর বর্ণনা করতে হ্যায়, অনাদি কর্ম ফলে পরিভবার নব জলে, এই ওই নন্দিতনে যে কিং করং এই শ্লোক ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ইস্তর গান মে লিখতে হ্যায়, অনাদি কর্ম ফলে পরিভবার নব জলে তরিবারে না দেখি উপায়, এ বিষয় হলা হলে দিবানিস হিয়া জলে মন কবু সুখ নাহি পায়, তো হাম বিষয় কেবল নেই ভক্তি ঠাকুর হলাহল বিষয় সবচেয়ে পাওয়ারফুল বিষয় উহা গিয়ে দিয়া, और यह केवल नहीं है, वहां पर हमको हमारे हालत क्या हो गया, वो काम क्रोध लोभ मोह मद माचे शत्रु काम क्रोध आदि छय बाट पारे दया भय अवसान होइलो आशी बेला। तो वो स्थिति में समुद्र में तो गिर गया है उसी तरह, अभी वो स्थिति में से प्रकार शत्रु काम क्रोध हमको परेशान कर रहा है। इतना केवल नहीं, उसके बाद भी दो ठग चीटर आते हैं, ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रतारियालय, वो स्थिति में भी दो ठग आते हैं, चीटर आते आके बोलते हैं, अरे तुमका क्या समस्या है, तुम्हारे शरीर में कितना क्षमता है, तुम आई ए बी एम ए इंजीनियर डॉक्टर, तुम्हारा कितना क्षमता है, तुम नौकरी कर सकते हो, मंदिर में क्यों जाते हो। तो इस तरह ठग हमको ठगाते हैं, ज्ञान कर्म आदि, ये दो ज्ञान और कर्म दो ठग आते हैं, ज्ञान कर्म आदि ठग दुई मोरे प्रतारियाल। तो इस स्थिति में हमको गिरा दिया है, लेकिन जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास है, ये जो स्वरूप बोलने के कारण हमारे हालत स्थिति हो। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किया महाप्रभु के साथ ये वार्तालाप, तब यदि कोई पूछ सकते हैं, हाँ हम कृष्ण का दास अभी तो पता नहीं है हमको, तो कब भूल गया, जिस तरह हमारे कुछ सामान है, कोई बोले ये आपका नहीं है, बोले तो मेरा है, मैं कैसे भूल जा सकते, जिस तरह आपका मकान, वो जो आपका मकान आप भूल सकते क्या बात को। तो इसी तरह बोला हम कृष्ण का दास है, हमको याद ही नहीं है, ये कैसे हो सकते। तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को ये बात कहते हैं, माया मुग्ध जीवेर नाई शत कृष्ण ज्ञान, क्योंकि इतना जिस तरह मान लीजिए 10 साल पहले आज कौन सा 22 दिसंबर, 10 साल पहले 22 दिसंबर में क्या खाना खाया था ब्रेकफास्ट अभी याद है, तभी इतना दिन के बाद ये नहीं रह सकते। तो कितना दिन पहले हम गिर गया, भगवान से अलग हुआ है इसलिए भूल गया, इसलिए भक्ति में ठाकुर लिखता है अनादि कर्म फले, उनका आदि नहीं, कब से शुरू हुआ है। तो माया ये क्यों हो गया, माया मुग्ध, मुग्ध शब्द अर्थात मुग्ध अर्थात मुग्ध अर्थात मोहित, आनंद में जो मोहित होता है ना, उससे माया के द्वारा मोहित होता है, उसके माया मुग्ध, माया का आनंद में वो कृष्ण को भूल गया। माया मुग्ध जीवेर नाई शत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कृष्ण कैल वेद पुराण, कृष्ण उनको कृपा करने के लिए वेद पुराण आदि शास्त्र प्रणयन किया है। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपनारे जानान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। शास्त्र हमको बताते हैं जो कृष्ण हमारे पिता है, हम उनका संतान है। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्त संबंध भक्ति प्राप्य साधन। यहां पर संबंध अभिधेय और प्रयोजन बताते हैं, संबंध क्या है, कृष्ण प्राप्त संबंध, कृष्ण और हमारे अंदर जो संपर्क है उसका संबंध कहते हैं, और वो संबंध जानने के बाद जो कर्म है उसका भक्ति कहते हैं। जिस तरह हम गैलरी फुटबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम में गया है, तो कोई एक आदमी बोले रेफरी वा बुला रहा है, या हमारे प्लेयर 21 है, एक आदमी चाहिए, तो हमको उधर में बुलाएगा खेलने के लिए, तो हम क्या पूछेंगे जाकर रेफरी को, क्या प्रश्न पूछेंगे, पहला खेलने के लिए बुलाया हमको, हम गया तो कुछ पूछेंगे उधर में, कौन सा टीम में खेलेंगे, यदि हमारे पता ही नहीं चल कौन सा टीम में खेलेंगे, नहीं खेल सकते। और उसके बाद टीम लीडर के पास जाके क्या बोलेंगे, पूछेंगे कौन सा पोजीशन में खेलना है, तो गोल कीपर की डिफेंस में खेलेंगे, स्ट्राइक में, पोजीशन नहीं जानकर हम खेल नहीं सकते। तो जब संबंध नहीं जान सकते तब कोई काम नहीं कर सकते। कोई मल्टीनेशनल कंपनी में हजार हजार आदमी नौकरी कर रहा है, आप बोले एक काम करो, तो पता ही नहीं आपका पोस्ट क्या है, संबंध किसके साथ क्या क्या काम करेंगे। तो कोई काम शुरू करने से पहले संबंध जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए बहुत ये जगत में भी कृष्ण के साथ संबंध किया है। तो जब संबंध फुटबॉल मैच में पता दिया, हाँ हाँ आप ये रेड जर्सी लेके खेलो, आप गोल कीपर है, ये संबंध जानने के बाद आपका कर्तव्य किया खेलना है। तो इसी तरह कृष्ण और हमारे साथ संपर्क जानने के बाद अभी जो कर्तव्य है उसका नाम है भक्ति। तो कृष्ण है संबंध, भक्ति है अविधेय। और इसके कारण क्या हम गोल फुटबॉल क्यों खेलते हैं, हाँ गोल देने के लिए। सारा दिन फुटबॉल खेला तो गोल गोल बार कहां था दिखाई नहीं, वो खेलने क्या मूल्य है। फुटबॉल खेलने का उद्देश्य है गोल देना। तो इसी तरह जीवन गोल शब्द का हिंदी में कहते प्रयोजन। तो आप कृष्ण है संबंध, भक्ति है, अविधेय, और कृष्ण प्रेम है प्रयोजन। अविधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, भक्ति है अविधेय, प्रेम है प्रयोजन। पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है, अर्थ शब्द का अर्थ क्या है, अर्थ अर्थात अर्थ पैसा केवल नहीं, अर्थ आर्य शब्द अर्थ अर्थात पर्पस उद्देश्य, कौन सा प्रयोजन के कौन अर्थ में यह काम करूंगा। तो पुरुष अर्थ, पुरुष अर्थात मनुष्य, अर्थ अर्थात प्रयोजन, मनुष्य जीवन का उद्देश्य का कथा है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ शिरोमणि, धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ है, लेकिन कृष्ण प्रेम है पंचम पुरुषार्थ, ये महाधन। लेकिन ये हमारे धन है, हमारे पैतृक संपत्ति है, लेकिन ये पैतृक संपत्ति हम हमारे पिता का बहुत सारा धन है लेकिन हम गरीब हैं। यह समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, एक स्टोरी बताते हैं। एक आदमी बहुत अमीर आदमी था, लेकिन उन्होंने अन्यत्र शरीर छोड़ दिया, उसका लड़का को बोल नहीं पाया आपका धन कहाँ रखे गया। इसलिए बच्चा सोचता है मेरा पिता का धन नहीं था, वो गरीब है भीख मांगे खाते हैं। तो एक सर्वज्ञ अर्थात ज्योतिषिया की बात है, नहीं तुम्हारे पिता का धन है वो जगह में है, इस तरह खुदाई कर मिल जाएगा। इस तरह उदाहरण के माध्यम समझते हैं। तो मैं हम इसको पढ़ेंगे अब एक साथ है, ये चैतन्य चैतन्य कहानी वर्णन है, तो ये सरल है, व्याख्या करना जरूरत नहीं। तो मेरा पीछे पीछे आप लोग पढ़िए इसको। इहाते दृष्टांत जैसे दरिद्रेर घरे सर्वज्ञ आशी दुख देखी पूछये ताहारे। दरिद्र का घर में सर्वज्ञ आशे आके पूछता है तुम इतना गरीब क्यों, तुम्ही क्या नो दुखी तुम्हार आशे पितृधन, तुम्हारे ना कहिलो अन्यत्र छाड़िल जीवन। सर्वज्ञेर वाक्य करे धनेर उद्देश्य, ओसे वेद पुराण जीव कृष्ण उपदेशे। सर्वज्ञ से बात है तुम्हारे पिता का धन है, ये धर्म है, तो हम क्या करेंगे, नहीं खोदेंगे। उसी तरह वेद पुराण हमको बताते हैं कृष्ण तुम्हारे पिता है, और कृष्ण सारे दुनिया का मालिक है, उनका साथ तुम्हारे प्रेम करा तुम्हारे धन है, उसको ढूंढो कैसे मिलते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे। तो वो ढूंढने का चार तरीका है, जिस तरह पूर्व पश्चिम उत्तर दिक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिख है, इसका धन ढूंढने के चार दिख भी है। सर्वज्ञ वाक्य मूल धन अनुबंध, सर्वशास्त्रे उपदेशे श्रीकृष्ण संबंध। बापेर धन आछे ज्ञाने धन नहीं पाए, तबे सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्तिर उपाय। अभी सर्वज्ञ यदि बोले कि आपको पिता का धन है तो हम क्या पूछेंगे? आप इतना जब बता दिए ये भी बता दो कैसे मिलेगा उनको। तो शास्त्र जब बताते हैं कृष्ण हमारे पिता हैं, तो शास्त्र को भी पूछ सकते भाई वो कैसे संपर्क जान सकते। यही स्थान आसे धन यदि दक्षिणे खुदीबे, भीमरुल बारुली उठीबे धन ना पाइबे। तो सर्वज्ञ कहते हैं यहाँ पर धन है, लेकिन दक्षिण दिख से खुदाई करोगे तो भीमरुल बारुली वास्त, उसका हिंदी क्या है? ततई क्या भीमरुल बारुली और मधुमक्षी की तरह है, मधुमक्षी नहीं उनके में से तरह बारा है। हाँ उसका नाम क्या, वास्प का हिंदी क्या है? भौरा भौरा। तो ये धन में दक्षिण दिख से खुदाई करोगे धन मिलेगा नहीं, भौरा आएगा और आपको काटेगा। तो यह महाप्रभु बोलना चाहते हैं यह कर्मकांड, कर्मकांड में प्रयास करेंगे केवल कष्ट और कष्ट। पश्चिमे खुदीबे ताहा जक्ष एक है, से विघ्न करिबे धने हाथ ना पड़ाय। अब पश्चिम दिखे खुदाई करोगे तो जक्ष आएगा, आक्रमण करेगा, धन तो देगा नहीं वो, और अब कष्ट देगा। ये पश्चिम दिखा है ज्ञान कांड। उत्तरे खुदीले आचे कृष्ण अजगरे, धन नहीं पावे खुदीते गिलीबे सवारे। और उत्तर दिखे खुदाई करोगे कृष्ण अजगर, काला अजगर साफ है, और खुदाई करने से तुमको निकल लेगा, धन तो दूर का बात है, तुम उसके पेट के अंदर चले जाओगे। ये कौन है? अष्टांग योग। तो कर्म ज्ञान आज योग के माध्यम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, इस तरह महाप्रभु ने बहुत अच्छा तरीके समझाया। तो बाचा कौन सा? पूर्व दिखे ताते माटी अल्प खुदीते, धनेर झारी पड़ीबे को तुम्हारो हाथे ते। तो पूर्व दिख थोड़ा खुदने से धन का झारी तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, बस कितना सरल है। और वो पंथ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये चैतन्य चरित में बहुत अच्छा वर्णन है, ये मध्य लीला 20 अध्याय में सनातन गोस्वामी का शिक्षा देते हुए। वह ये जीव का स्वरूप, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास वर्णना किया है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जीव का स्वरूप और एक दूसरा संज्ञा दिया है। गीतार गान श्रील प्रभुपाद पूरे भगवत गीता बांग्ला कविता आकार में लिखा है, उसका नाम दिया गीतार गान। वहां पर दूसरा अध्याय का 66 नंबर श्लोक में प्रभुपाद जीव का स्वरूप का दूसरा संज्ञा दिया है। जीवेर स्वरूप है आनंदते मोती, यह प्रभुपाद कहता है जीव का स्वरूप है आनंद का मोती, अर्थात जीव का स्वरूप हमेशा आनंद करना है। तो ये दो स्टेटमेंट विरोधाभास नहीं है, क्योंकि जीव का स्वरूप है, जीव है आत्मा है, परमात्मा का अंश है, क्योंकि परमात्मा सचित आनंदमय है, इसीलिए जीवात्मा भी आनंदमय है। इसीलिए जीव का स्वरूप आनंद में रहना है, सत अर्थात नित्य कोई जीव मानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जीवात्मा सत है नित्य है। कोई व्यक्ति नहीं सोचता है वो अज्ञानी है। हाँ, वो यदि भी क्रिकेट बॉल जीवन में हाथ में लेके देखा है नहीं, फिर भी अच्छा कोई क्रिकेट आए उनको भी उपदेश देना चाहेंगे। हर आदमी सोचता है वो कितना ज्ञानी है, क्योंकि जीवात्मा का चित स्वरूप है, चित है और आनंद अथवा आनंदमय। तो जीव का स्वरूप है आनंद लेना है, लेकिन पूर्व बात कहता है अपन यद्य भी जीव का स्वरूप आनंद में रहना है, लेकिन जब तक कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे वो आनंद कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं। बुद्धि जोग बिना तार कोथाए भागवती, जब तक बुद्धि जोग कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है तो आनंद कभी मिलेगा नहीं। जितना ही ढूंढेगा, जिस तरह चैतन्य चैतन्य वर्णन कर रहे हैं, यदि भी देख रहा है यह धन है, पश्चिम दक्षिण पश्चिम उत्तर खोदा नहीं मिलेगा। उसी तरह जीव का स्वरूप आनंद में रहना है, लेकिन बुद्धि जब अर्थात कृष्ण भक्ति जब तक नहीं करेंगे उनका ये आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा। अतएव से भावना नहीं जार स्थिति कोथा शांति तार बोलो सुखेर प्रगति। तो जब तक ये कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है तब उनको सुख प्राप्त करने का कोई संभावना नहीं है। तो प्रभुपाद जो गीतर गान लिखा है तो हम थोड़ा गान गा सकते, तो मृदंग बजाएंगे। अभी टाइम नहीं है व्याख्या करने के लिए, दो चार लाइन गाएंगे तो हम देख सकते प्रभुपाद कितना अच्छा गान पूरे भगवत गीता गान के रूप में दिया है।
जीवेरो स्वरूपो हाय आनंदेते मोती, जीवेरो बुद्धि जोग बिनातार कोथायो भागति, अतएव से भावना नाही जारो स्थिति, अतएव कोथा शांति तारो बोलो सुखेरो प्रगति, इंद्रियो चालित करी मनोधर्मे स्थिति, इंद्रियो वायुर मध्यते जथा नौकारो प्रगति, वायु से नौका जेमन सदा टलमल करे, से नौका अयुक्त व्यक्तिर प्रज्ञा से रूप हरे, अतएव महाबाह सुन मनो दिया, অতএব নিগৃহীত মন যাক আমারে সোপিয়া, তাহার ইন্দ্রিয় বশ মোরে সমর পিত, তাহারি প্রজ্ঞা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, বিষয়ী বিষয়ে নিষ্ঠা করে সে প্রচুর, বিষয়ে সর্বদা জাগ্রত সেই সদা ভরপুর, সংযমীর সেই চেষ্টা নিশার সমান, সংযমী জাগ্রত থাকে আত্মবিষয়ান, বিষয়ী রোষেয় আত্মা রাত্রি রোষমান, উভয়ের কার্য হয় বহু ব্যবধান, ভক্তি বেদান্ত কহে শ্রী গীতার গান, ভক্তি শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ, হরে কৃষ্ণা হরে কৃষ্ণা 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्ण। चलो भगवत की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की। श्रील प्रभुपाद विरचित गिटार गान की। सामवेद गौर भक्तवृंद की। गौर प्रेमानंद।